नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबके मंगलमय और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मैं समझती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज हम एक ऐसे सवाल को देखेंगे जिसके लिए लेखक ने अपना हृदय चीर कर रख दिया है। चलिए सुनते हैं भाई वीरेंद्र सिंह बैस जी की लिखी हुई कथानक। हर मौसम की अपनी महत्ता होने के साथ साथ मार भी होती है जो सबको बर्दाश्त करनी होती है, विशेषकर बुजुर्गों को। शीत ऋतु में खिली नर्म सी धूप और गर्म सेक का लालच लें, हर जीव को ये धूप को ताकना आपने हमने सबने देखा होगा और अवसर मिलते ही उसका भरपूर आनंद लेना भी देखा है। वहीं बुजुर्ग के लिए शीत ऋतु उसकी पसलियों से लेकर शरीर के हर अंगों में दर्द भर देती है और उसके लिए धूप महज आनंददायिनी न होकर औषधि का भी काम करती है। ऐसे ही घने बसे मोहल्ले में धूप सुबह से थोड़ा थोड़ा सरकती है और दोपहर के बाद सड़क के दूसरे कोने पर जा ठहरती है। रोज़ एक बूढ़ी अम्मा जो कि सड़क के इस पार रहती हैं, लगातार धूप का पीछा करने के जतन में सड़क के उस पार जाने का प्रयत्न भी करती हैं। आते जाते को ताकती कि कोई रुक कर उसे सड़क पार करा दे, किंतु अपनी व्यस्तता में सब भागे चले जाते। एक दिन ऐसे ही वो कदम आगे बढ़ाती फिर पीछे कर लेती। तभी स्कूल से घर के लिए जाती एक बच्ची ने उस बूढ़ी अम्मा को देखा और रुक गई। पहले तो वो समझने की कोशिश करती रही कि वो चाहती क्या है, आगे बढ़ के पीछे कदम क्यों ले लेती है। ऐसा सोचकर पास आई तब उसने देखा आते जाते रिक्शे और गाड़ियों के चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। बच्ची पास जाती है और बूढ़ी अम्मा उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसके माथे पर हाथ फिराकर पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? सुधा, बच्ची बोली। मासूम सी मीठी आवाज सुनकर अम्मा मुस्कुराकर फिर पूछ बैठी, किस कक्षा में पढ़ती हो? जवाब मिला, पांचवी कक्षा में। इतना कहकर वो अम्मा को उस पार छोड़ अपने घर को निकल जाती है। फिर यही सिलसिला दोनों के बीच चलता शुरू हो गया दिनों दिन तक। दूर से आती सुधा अम्मा के देहरी पर ही ताकती कि अम्मा बैठी है क्या, और उधर अम्मा भी निहारती कि सुधा आती होगी। छुट्टियों के दिन भी सुधा बिना नागा किए अपनी सहेलियों के संग आती और दादी को दूसरे कोने में छोड़कर थोड़ी देर उनसे बतियाती और फिर सहेलियों के संग वापस चली जाती। दो अनजानों में अजीब सा आस का एक रिश्ता सा बन गया था। दोनों ही एक दूजे को दूर से ही देखकर मुस्कुराती और फिर बहुत देर बतियाती। बाकी लोगों को अपने ही कामों की दौड़ भाग में व्यस्तता दिखती। एक वही बच्ची थी उस बूढ़ी के मर्म को पढ़ पाती, कभी उनसे कहानियां सुनती तो कभी सुनाती। ऐसे में ही दो महीने बीत गए। एक दिन रोज की तरह सुधा दूर से देखती आ रही थी कि अम्मा को लेकर पार करा देगी, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दी। बहुत देर तक देखी, उनके खंडहर से मकान के बाहर जाकर खड़ी सुधा सोचती रही, जाऊं कि नहीं। हिम्मत नहीं जुटा पाई, वापस चली गई। अंदर जाना उसके हिम्मत में नहीं था। दो दिन और बीत गए, अम्मा उसे नहीं दिखी। दिन दिन भर चिंता में रहती सुधा। फिर आखिरकार एक बार मन बनाकर उस मकान में घुसी गई। सहमे सहमे से हल्के कदम आगे रखती जाती और अम्मा अम्मा पुकारती जाती, लेकिन बहुत अंदर जाने तक उसे कोई नहीं दिखा। फिर घर के आखिरी तहखाने नुमा एक छोटे से कमरे में उसे आवाज़ें सुनाई दी कराहने की। वो डरी सहमी आगे पीछे देखती उधर पहुंची तो अंदर के कमरे में जर्जर सी चारपाई पर बूढ़ी अम्मा को कराहते देखा। वो बेचैन उठी। अम्मा क्या हुआ? बूढ़ी अम्मा उसे उधर देखकर दर्द में भी मुस्कुरा पड़ी। बोली, कुछ नहीं रे बूढ़ा शरीर, बस वही। सुधा की भवें तन गई। बोली, सच बोलो अम्मा, क्या हुआ? बूढ़ी अम्मा उसके हाथ में हाथ रखते हुए बोली, पड़ोस के बच्चे खेल रहे थे, मुझे लाचार के भाग फूटे जो सामने आ गई, बस भिड़ गई, धक्का लगा और कूल्हे की अंदरूनी चोट आ गई है शायद, उठना तो दूर, ठीक से हिल भी नहीं सकती। सुधा ने कमरे के अंदर नज़र दौड़ाई तो उधर गिनती के कुछ सामान जो फैले हुए पड़े थे, उसने उनके ज़रूरत के सामान को लाकर उनके पास रख दिया और पूछा, अम्मा का तुम्हारी देख रेख करवे के लाने कोई ना है? उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखकर बूढ़ी अम्मा फिर मुस्कुराई और प्यार से उसके माथे पे हाथ फेरती हुई बोली, पगली तू है ना। सुधा कम उम्र में भी समझ रखती थी, चाहती थी कि वो जो पूछे उस सवाल का वही जवाब मिलना चाहिए। उसने बनावटी गुस्से में फिर कब पूछा, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ। अम्मा ने सिर घुमाकर दीवार की तरफ इशारा किया जहाँ दो तस्वीरें टंगी थी। सुधा देखने लगी, दो नौजवानों की तस्वीरें, दोनों फौजी वर्दी पहने हुए। अम्मा बोली, एक को बीमारी ने चपेट में ले लिया, दूसरे को सीमा की रक्षा करते हुए शहादत मिली। शहादत मतलब? सुधा बच्ची ही तो थी। अम्मा दर्द की लहर को चेहरे पर नहीं आने दे रही थी, पर जब सुधा ने उनके जज्बाती दर्द को अनजाने में छेड़ दिया तो उसके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की लकीरें से आ गई, पर रुंधी सी आवाज की कंपन को भी भरकस काबू में करते हुए अम्मा ने बहुत सहजता से बताया, बच्ची शहादत उसे कहते हैं जब बच्चे अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप बेहद संवेदनशील श्रोता हैं और बहुत धैर्य से मेरी कहानियों को सुनते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, लेकिन उन सब के कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। भाई वीरेंद्र सिंह बैस जी की कथाओं को मुझे आवाज़ देने का मौका मिलता है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मर्म तो बहुत हैं, जिंदा दिली भी बहुत है, लेकिन कभी कभी मर्म को स्पर्श करते हुए हम अपने आप से मिलने लगते हैं। इस कहानी का अगला भाग फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।